हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी का इस भगवद गीता चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 28 प्रथम अध्याय 28 और 29 ये दो श्लोकों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 1.28
दृष्टम वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यासि भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरहा, हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथो नासति धावतो बही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातर्पल मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। 29 श्लोक वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांधीवं संस्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांधीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्याधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में ज्वलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है।
ओम ज्ञानतिमिरांडस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीध पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं जाग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रथम अध्याय का ये जो 28वां श्लोक है 28, 29 और 30 जो तीन श्लोक है यह तीन श्लोकों में जो विषय है अर्जुन की करुणा कंपैशन। दुष्ट वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। इन सभी को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अपने शस्त्रास्त्र चलाऊं, मैं युद्ध करूं। इस प्रकार से मैं सोच भी नहीं सकता हूं इनको देखने के पश्चात। इसका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक देते हैं। अर्जुन की जो स्थिति है इसमें जो अर्जुन कह रहे कि मैं अभी इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ूंगा। युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ोगे युद्ध, क्यों युद्ध नहीं करोगे? आपने युद्ध करना चाहिए। इस बात पे, इस विषय पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से तो 30वें श्लोक तक समझाएंगे अर्जुन को कि आपको युद्ध करना क्यों अनिवार्य है, वो आपका धर्म है। वो हम दूसरे अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। इस तीन श्लोक में हम देखेंगे अर्जुन की करुणा और उसके पश्चात 31 से 35 31 to 35 ये पांच श्लोकों में अर्जुन ये कहेंगे कि क्या सुख मिलने वाला है ये युद्ध करने से, हमको कौन सा सुख मिलने वाला है? हम युद्ध करेंगे, यदि हम जीत भी गए तो कौन सा सुख मिलने वाला है और हार भी गए तो कौन सा सुख मिलने वाला है? नो एंजॉयमेंट। व्यक्ति सुख का विचार कब करता है कि भाई मैं सुखी हूं, मेरे पास ऐश्वर्य है, पर मेरा ऐश्वर्य देखने वाले कोई होगे नहीं तो उसका क्या लाभ? व्यक्ति ऐश्वर्य क्यों पाता है, क्यों ऐश्वर्य को प्राप्त करता है? क्योंकि कोई देखने वाले होते हैं। अब कोई दो देखने वाले ही नहीं है तो किसको दिखाओ सुख, किसको दिखाओ ऐश्वर्य, किसको दिखाओ? तो युद्ध करने का क्या लाभ? नहीं युद्ध करना है क्योंकि नो सुख, उसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई सुख नहीं है। इसलिए इस बात की चर्चा अर्जुन करेंगे 31 से 35 श्लोक तक और फिर उसका भी उत्तर भगवान दूसरे अध्याय के 31 और 32वें श्लोक में देंगे। फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है युद्ध करता हूं, परंतु यदि मैं युद्ध करता भी हूं तो कितना पाप होगा, वो मेरे कर्मों से जो मुझे पाप मिलेगा वो पाप का मैं इतने बड़े पाप का भागीदार बनूंगा, मेरा कैसा होगा। भय है अर्जुन को। किस बात का भय है? युद्ध का भय नहीं है। किस बात का भय है? पाप का भय। ये सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लक्षण है। करुणा, प्रभुपाद जी महाराज ने तात्पर्य में भाव बताया है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में दया भाव उत्पन्न होता है। हमने पिछले चर्चा सत्र में भी उसकी उसके विषय में चर्चा की है। करुणा, करुणा ये सात्विक गुण है, सात्विक व्यक्तियों के गुण है करुणा। और यहाँ पे अर्जुन अब क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि मैं युद्ध करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो सुख नहीं है, पाप है, मेरे अपने ही लोग हैं, और फिर कहते हैं इस युद्ध करने से तो जो परंपरा चलती आ रही है हमारी पारिवारिक परंपरा, दादा से परदादा से पहले जो वंशावली में जो परंपरा चलते आ रही है वो सारी परंपराएं ध्वस्त हो जाएगी इस युद्ध से। यदि मैं युद्ध करता हूं तो हमारी सारी परंपराएं समाप्त हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा, क्या लाभ युद्ध करने से। इस बात को अर्जुन कहेंगे 37-43, और फिर उसका उत्तर भगवान देंगे 2.45-46 में। और इस प्रकार से अर्जुन की जो दशा होगी, अर्जुन कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, और वो स्थिति अर्जुन की जो है दूसरे अध्याय के छठवें श्लोक तक 2.6 तक रहेगी। और सातवें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि अभी आप ही बताइए क्या करना है, समर्पित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय का हमने जो चर्चा की है इसमें अर्जुन कह रहे हैं युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दया भाव जागृत हुआ। दूसरी बात क्या है? भय, पाप का भय उत्पन्न हुआ। तीसरी बात क्या है? जो पारिवारिक जो चरित्र है, परंपरा जो चलती आ रही है पुरखों से, वो परंपरा ध्वस्त हो जाएगी। और पांचवा कारण क्या है? निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो गई, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। कभी कभी हम भी कहते हैं ना कि मैं धर्म आधारित कर्म नहीं करूंगा, मैं मेरे नित्य कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म पे आधारित कर्म करूंगा तो बहुत समस्या है, अधर्म पे आधारित कर्म करूंगा तो एकदम ऐसे चुटकी से हो जाएंगे, धर्म पे आधारित कर्म करूंगा तो बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे कारण होते हैं हमारे पास, अर्जुन पांच ही कारण बता रहे हैं। अर्जुन पांच कारण में सबसे पहला क्या कारण है? करुणा। उनके मन में करुणा है, करुण भाव है, अपने लोगों को क्यों मारो। दूसरा कारण क्या है? पाप का भय है। हम कब आज के युग में हम देखते हैं कि एक पाप से भयभीत नहीं है कोई, पाप से किसी को भय ही नहीं है, क्या पाप और क्या पुण्य, इस प्रकार से चर्चा करते हैं। परंतु अर्जुन एक सात्विक प्रवृत्ति के धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए उनको भय लग रहा है, वो भयभीत है। किससे भयभीत है? पाप से भयभीत है। और फिर तीसरा कारण क्या है? परंपरा नाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और फिर पांचवा कारण क्या है? युद्ध कर निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो गई, इनडिसीजन, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे, वही स्थिति में पड़े हैं कई दिनों से, पर कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे, बड़ी कठिन समस्या है। सो इस प्रकार से अर्जुन इन सब बातों से कांप रहे, शरीर अर्जुन का कांप रहा है। और क्या कहते हैं? मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख गया। ये भय का लक्षण है, व्यक्ति भयभीत होता है तो कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है। अरे अर्जुन भयभीत, महान धनुर्धारी, परंतप, अपने शत्रुओं को तपाने वाले, ऐसे अर्जुन भयभीत, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है? ऐसी कौन सी बात है जिससे अर्जुन भयभीत हो गए? अर्जुन जैसे व्यक्ति का अंग कांप रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले अर्जुन ने कहा था कुछ दिन पहले कि दिखाओ किसकी हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की, चलो, और आज कांप रहे हैं, परिस्थिति इतनी बदल गई है, आज भयभीत हो गए हैं। ऐसे हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। कोई कितना भी धनवान बलवान ऐश्वर्यशाली या ज्ञानी ज्ञानवान सब प्रकार का वान यदि है वो, तो भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि एक क्षण शरीर कांपने लगेगा, मुख सूख जाएगा, व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। अर्जुन जो यहां पे भयभीत हो रहे, वो तो धर्मात्मा है, वो तो भक्त है, भक्त है वो। भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान से विभक्त नहीं होता है, विभक्त अर्थात दूर अलग, जो भगवान से विभक्त नहीं होता है वो भक्त है, जो भगवान से विभक्त होता है वो अभक्त है। सो अर्जुन कभी कृष्ण से विभक्त नहीं हुए, इसलिए वे भक्त है, अर्जुन की विशेषता है। पर अब हम यहां पे यह समझ सकते हैं कि अर्जुन इतने भयंकर दबाव में है, इसको इंग्लिश अंग्रेजी में कहते हैं साइकोन्यूरोसिस। साइकोन्यूरोसिस अर्थात व्यक्ति इमोशनल प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है। क्या होता है इमोशनल प्रेशर? भावुकता, इमोशंस, भावनाएं, उस प्रेशर को, उसके दबाव को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, चाहे वो अर्जुन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी भौतिक स्तर पे बलशाली क्यों ना हो, उसमें कितना भी भौतिक बल होने दीजिए, परंतु यदि वो भावनाओं को, अपने इमोशंस को यदि नियंत्रित नहीं कर सकता है, तो वो उस इमोशंस को, उस भावना से वो क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। वो उसको प्रेशराइज, उसका इतना प्रभाव उसके ऊपर होता है, उसके विचारों का, भावनाओं का, इमोशंस का, कि वो गलित गात्र होता है, गात्राणी, वो भयभीत हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शक्तिमान होके भी दुर्बल हो जाता है। आप देख सकते हैं अर्जुन जैसा व्यक्ति यदि ऐसा दृश्य देखकर धाराशाही हो सकता है, कांप सकता है, सूख सकता है, सूख जाता है, तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है? अर्जुन भक्त है, अर्जुन पराक्रमी है, अर्जुन बड़े सात्विक धर्मात्मा है, सारे शस्त्रास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, और ऐसी स्थिति में भी अर्जुन की ऐसी दशा हो गई, तो आपका हमारा क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या करना होगा इसके लिए? ये तो हमको भयभीत करने वाली बात है इस श्लोक में। अर्जुन की ये दशा हुई तो हम थोड़ी ना बचेंगे। तो यदि हमको बचना है ऐसी अवस्था से, तो क्या करना होगा? भगवान की शरण में तो अर्जुन भी थे। वो तो भगवान की शरण के बिना नहीं बन सकते। बिना भक्ति से निर्भयता नहीं, इसकी चर्चा हमने पहले देखी है। भगवान को शरण जाना होगा, समर्पण करना होगा, भक्त कर, भक्ति कर, कैसे? अपने कर्म करके। कर्म की तो रिएक्शन आएगी फिर। अर्जुन भी अपने कर्म कर रहे थे। अटैचमेंट नहीं रखना, और कर्म फल को भगवान को अर्पण करना। अभी तो कर्म ही हम नहीं कर पा रहे, कर्म करते वक्त ही डगमगा रहे, डर रहे, कांप रहे, मुंह शरीर सूख गया है, कर्म ही तो नहीं कर पा रहे अर्जुन, कर्म ही तो नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तो करना ही होगा। बिना हरे कृष्ण से कुछ नहीं होगा, वो तो करना ही है। ऐसी कौन सी वस्तु इनबिल्ट हमारे पास है, ऐसा क्या हमारे पास है कि जिसके कारण ये दशा हमारी नहीं होगी? हमारा भौतिक बल हमारे पास बहुत है। क्या? फेथ इन गॉड, भगवान में श्रद्धा। हाँ बिल्कुल सही है, भगवान तक पहुंचने से पहले हमको अपने आप को समझना होगा। हाँ हम देखिए, हम नित्य एक ही प्रयास करते हैं हमारा भौतिक बल कैसा बढ़े, शारीरिक शक्ति कैसी बढ़े, मटेरियल जो स्तर है हमारा, भौतिक स्तर जो है हमारा, उसको कैसे ऊंचा उठाए। अब कितना भी ऊंचा उठाइए, ये जो आंतरिक व्यक्तित्व है हमारा, इनर पर्सनालिटी, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी। भौतिक स्तर अर्थात एक्सटर्नल पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व जो है वो बाह्य व्यक्तित्व से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी समस्या ये है कि जो आंतरिक व्यक्तित्व हमारा जो है, इनर पर्सनालिटी जो हमारी है, वो हमारी इनर पर्सनालिटी डे बाय डे क्षण प्रतिक्षण दुर्बल होते जा रही। और भौतिक अर्थात एक्सटर्नल पर्सनालिटी, इसको हम मजबूत कराने में सदियों से लगे हुए हैं। अर्जुन के भी बहुत सारे शस्त्रास्त्र थे, पराक्रमी थे, परंतप थे, सारी शस्त्र विद्या में निपुण थे, इवन यक्ष गंधर्वों को भी वो हराते थे, देवताओं के साथ भी वो युद्ध करने की क्षमता रखते थे, इतने पराक्रमी थे अर्जुन, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? क्योंकि उनका जो इनर फैकल्टीज है, आंतरिक व्यक्तित्व जो है, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। इनर व्यक्तित्व अर्थात आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात अंदर का इंसान, अंदर का व्यक्ति अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर यदि हम कोई कार्य नहीं करते और केवल हमारे भौतिक बल की ओर ही हम आकर्षित रहते हैं, उसी को बढ़ाते रहते हैं और उसी के लिए चेष्टा करते रहते हैं जीवन भर, तो ऐसे कई क्षण हमारे जीवन में आएंगे कि हम इस प्रकार से गात्राणी जैसे अर्जुन हो गए हैं, कांप रहे हैं, भयभीत हो गए हैं, सूख गए हैं, ये हमारी स्थिति हो गई, हो सकती है, होती है। इमोशनल प्रेशर को अर्जुन सहन नहीं कर पाए, उसको सहन नहीं कर पाने की वजह से भयभीत हो गए। जब हमारा मन अस्थिर होता है, जब हमारा मन अस्थिर होता है, उस क्षण हम कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले सकते, हमारे सारे निर्णय गलत हो जाते हैं, हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। When our mind is agitated, जब हमारा मन अस्थिर होता है, तो जब अस्थिर मानसिकता में हम कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले सकते हैं, कोई कार्य भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 फीट चौड़ा एक लकड़ा, एक क्या प्लाई बोलते हैं उसको, प्लाई 6 फीट चौड़ा है और 500 फीट लंबा है, कितना 500 फीट लंबा है और उसको जमीन पे डाल दिया और हमको कहा गया कि इसके ऊपर से चलो, हम सब चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आराम से चल पाएंगे ना? जमीन पे डाल दिया है प्लाय, 6 फीट बाय 400 फीट का है, 6 फीट चौड़ा 400 फीट लंबा, अब दौड़ के चले जाएंगे, है ना? परंतु ये 400 फीट का जो प्लाय है अपने इस बिल्डिंग की टेरेस पे रखा है, उसका एक एंड, और दूसरा एंड अपने गोविंदा के गोविंदा रेस्टोरेंट के ऊपर रखा और फिर कहा कि चलो इसके ऊपर चलेंगे। क्यों नहीं? मजबूत है प्लाय, टूटेगा नहीं। क्या क्यों क्यों डरते हैं? 6 फीट का है चौड़ा। मन अस्थिर हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है किसके कारण? भय के कारण। भय के कारण मन अस्थिर हो जाता है, गिरोगे नहीं पता है। मजबूत प्लाय है, 6 फीट चौड़ा, इतना 6 फीट इतना हो जाता है, इससे ज्यादा होगा, इतना चौड़ा है, इससे भी ज्यादा हो। चलने के लिए कितना चाहिए? 1.5-2 फीट। ये 6 फीट का है, 400 फीट चलना है। चल सकते हैं परंतु नहीं चल पाएंगे। क्यों? मन अस्थिर हो गया, मन में भय आ गया। तो मन अस्थिर किससे किससे होता है, किन बातों से मन अस्थिर होता है? और इमोशनल प्रेशर, भय, और अटैचमेंट, आसक्ति, भय, आसक्ति, और आत्मविश्वास का अभाव, और अहंकार, और अज्ञान। समझिए उसको, शरीर के स्तर पे ही केवल सोचना, उसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान। ये सब जो बातें हैं ये मन को अस्थिर कहती है, और हम सबको पता है। उत्तर आप ही ने दिए सब। ये सारी बातें मन को अस्थिर करती है, और अस्थिर मन हमारा कोई भी निर्णय, योग्य निर्णय नहीं ले सकता, सारे निर्णय गलत हो सकते हैं। अस्थिर मन सुखी नहीं हो सकता। मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, और अस्थिरता के जो कारण है उस कारणों को हमने ध्यान से समझना चाहिए। वो जो कारण है हमको जो अस्थिर बना देते हैं उनको ध्यान से समझना चाहिए। हम ज्यादातर पूरे हमारे एकेडमिक जीवन में जो हमारा शिक्षण जो हुआ है, स्कूल कॉलेजेस या जहां कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज में हमारा जो शिक्षण हुआ है, एजुकेशन हुआ है, उसमें हम कहीं पे भी ये नहीं सीखते हैं। कहीं पे भी किसी ने कोई, किसी कोई यूनिवर्सिटी ने सिखाया है किसी को? इवन मेडिकल साइंस में भी मुझे नहीं लगता ये सिखाते होंगे। मेडिकल साइंस में भी मन की अस्थिरता के विषय में कोई सब्जेक्ट होगा ऐसे नहीं लगता है। कोई विषय नहीं है। करियर है, करियर है, परंतु कैरेक्टर नहीं समझाते हैं। करियर समझाते हैं परंतु कैरेक्टर नहीं समझाते, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। चरित्र और चरितार्थ, करियर एंड कैरेक्टर, चरित्र और चरितार्थ दोनों होने चाहिए। कैरेक्टर को जब हमको समझाया जाएगा तब उसमें सारे विषय आएंगे। हमारे इनर फैकल्टीज, जो हमारा इनर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिखाते हैं परंतु इनर मैनेजमेंट हम नहीं सीखते हैं। इनर मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैनेजमेंट एकदम एक्सपर्ट हम सब है, हम सब हाईली एक्सपर्ट है मैनेजमेंट में, इनर मैनेजमेंट क्योंकि सिखाते ही नहीं है। अर्जुन की इस जो अवस्था है ये हमको अर्जुन सिखा रहे हैं, अर्जुन ऐसे नहीं है परंतु अर्जुन हमको सिखाना चाहते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं कि देखिए इनर मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल मैनेजमेंट। इनर पर्सनालिटी को विकसित करना, हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम कितने भी शक्तिशाली बलशाली हो जाए परंतु फिर भी पराभव हमारा ही होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो ये महत्वपूर्ण बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि करियर एंड कैरेक्टर, अर्थात करियर अर्थात यश जो हमको चाहिए, उस यश के साथ हमको और क्या चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए। कैरेक्टर अर्थात चरित्र, चरित्र अर्थात चरित्र कहां से आता है, चरित्र हमारे इनर पर्सनालिटी से बनता है, हमारे आंतरिक व्यक्तित्व से बनता है, हमारी मानसिकता, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, इनसे हमारा चरित्र बनता है। तो वो बहुत आवश्यक है। इस श्लोक में कहा है दृष्टवेमं सजनम कृष्ण, ये कृष्ण नाम का उच्चारण यहां पे किया गया है। ये कृष्ण नाम अर्जुन को बहुत प्रिय है, अर्जुन बहुत बार कृष्ण कहेंगे भगवत गीता में, कृष्ण बहुत बार कहते हैं, कृष्ण लगभग 9 बार या उससे भी ज्यादा बार हो सकता है, 9 बार लगभग अर्जुन ने कृष्ण शब्द किया है, पर दूसरा नाम, कोई भी दूसरा नाम इतनी बार अर्जुन ने नहीं उच्चारण किया है, कृष्ण इस नाम का सबसे ज्यादा उच्चारण किया है। और कृष्ण ने भी पार्थ इस नाम का सबसे ज्यादा उच्चारण भगवद गीता में किया है। कृष्ण को पार्थ जो नाम है अर्जुन का वो प्रिय है, और अर्जुन को कृष्ण का कृष्ण यह नाम जो है वो प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी अपने इस संस्था का नाम क्या लिखा रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण। तो कृष्ण अर्जुन के मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं। अर्जुन के मित्र होने पर भी ये स्थिति हुई है, कृष्ण अर्जुन के मित्र है इस समय, फिर भी यह स्थिति हुई है। कई बार हमको कहा जाता है, ये बोला जाता है समाज में, संसार में, वे कहते हैं क्या है, भगवान ने इतना भी नहीं किया आपके लिए, आप इतने सालों से नाम ले रहे, जप कर रहे, ये कर रहे, मंदिर में जा रहे, इतना भी भगवान नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे फिर, भगवान क्या करते हा? कई प्रश्न आते, भगवान ने ये करना चाहिए, भगवान ने वो करना चाहिए, कृष्ण ने ये नहीं किया, कृष्ण ने वो नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कृष्ण मित्र है और मित्र होने पर भी अर्जुन की ऐसी अवस्था हुई है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि कृष्ण स्वयं ही हमारे लिए सब कुछ नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं आपके साथ हूं, करना आपको है, मैं आपके बाजू में खड़ा हूं, लेकिन करना किसको है, आपको है। जब आप कुछ करते हो वो जो कुछ भी करते हो वो मेरे उपदेशों के अनुसार होगा, मेरे आदेशों के अनुसार होगा, मेरी उसमें रुचि होगी तो आपको उसमें यश आएगा, और यदि वैसे नहीं होगा तो धारा तीर्थी हो जाओगे। कृष्ण कुछ नहीं करते, कृष्ण साथ देते हैं, कृष्ण देखते हैं कि आप उनके ऊपर कितने निर्भर हैं, कृष्ण यह देखते हैं कि आप उनके उपदेशों का कैसे पालन करते हैं, कृष्ण देखते हैं कि मन में कोई कपट तो नहीं है। ये बहुत कृष्ण को इस बात को भी समझना पड़ता है, कृष्ण को भी इस बात को समझना होता है कि ये व्यक्ति कपटी है कि नहीं है। ये बात कृष्ण को भी बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए कृष्ण परीक्षा के ऊपर परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण सोचते हैं इसके मन में कुछ कपट है क्या। जब बहुत सारी परीक्षा में पास हो जाता है व्यक्ति तब कृष्ण कहते हैं अरे ये कपटी नहीं है, कपट जो है वो हमको भगवान हमारे निकट होते हुए भी हमको दूर ले जाता है भगवान से। कपट उस सत्य से, उस भगवान से कोसों दूर ले जाता है हमको, भले ही भगवान बाजू में खड़े क्यों ना हो, परंतु हमको करोड़ों मील दूर ले जाता है भगवान से। तो भगवान ये देखते हैं, और यदि है तो उसको स्वच्छ कर देते हैं ऐसी परीक्षाएं लेके। अब अर्जुन की परीक्षाएं हो रही क्योंकि उनके अंदर जो अनर्थ है वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आके वो उनके अंदर से निकल जाएंगे और उनको ज्ञात हो जाएगा, उनको अनुभव हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। वो हम सब की बात ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम यदि उसमें ध्यान धैर्य रखते हैं, कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, तो धीरे 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 सारे वीकनेस दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में जो मित्रत्व की बात कही है, मित्रत्व सखा फ्रेंडशिप ये कैसे होती है, कोई हमारे मित्र है, ये मित्रत्व को हम बढ़ाना चाहते हैं और गाढ़ा करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। शास्त्र में वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ददामी गृहणाति गृहम आख्याति पश्यति, अर्थात उपहार देना चाहिए मित्रों को, गिफ्ट देने चाहिए तो अच्छी फ्रेंडशिप होती है, और मित्रों से गिफ्ट लेना भी चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, मित्रों को उपहार प्रसाद देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, और उनके यहां जाके भोजन करना भी चाहिए। नहीं ऐसा है ना, उपहार लेना देना या गिफ्ट देना, लेना देना, देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, अपने हृदय की बात उनको कहनी चाहिए और उनके हृदय की बात सुननी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके हृदय की बात केवल सुननी चाहिए और अपने हृदय की बात नहीं बोलनी चाहिए। यदि मित्रत्व को आपको गाढ़ा बनाना है तो अपने हृदय की बात बोलनी भी चाहिए और उनके हृदय की बात सुननी भी चाहिए। ये तीन बातें यदि हम करते हैं, तीन बातें कौन सी, उपहार देना, उपहार लेना, भोजन करना, भोजन कराना, और अपने हृदय के अंदर जो बातें हैं उनसे बोलना और उनके हृदय की बातें सुनना, इससे मित्रत्व और गाढ़ा होता है। तो अर्जुन और कृष्ण मित्र हैं, उनके बीच में इसी प्रकार के संबंध है, वो सारी बातें जो है एक दूसरे को बोलते हैं, अर्जुन और कृष्ण सखा है, मित्र है। यहाँ पे इस श्लोक में एक शब्द आया है, युयुत्सुं समुपस्थितम्। युयुत्सु समुपस्थितम् अर्थात युद्ध के लिए उपस्थित है। पहले अध्याय का पहले श्लोक में क्या था, समवेता युयुत्सव। इस श्लोक में क्या है, युयुत्सुं समुपस्थितम्। पहले अध्याय में भी यह था कि समवेता युयुत्सव, युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस श्लोक में भी कहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला श्लोक किसने कहा था, धृतराष्ट्र ने कहा था, यह श्लोक कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने जो श्लोक कहा था उसमें उन्होंने कहा था समवेता युयुत्सव, परंतु उसके आगे कहा था माम कहा, धृतराष्ट्र ने कहा था मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। इस श्लोक में भी युद्ध के लिए एकत्रित है, और इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, आगे शब्द है स्वजनम। धृतराष्ट्र ने क्या कहा था, माम कहा, अर्जुन ने क्या कहा, स्वजनम। कितना भेद है, वो स्वार्थी है, माम कहा मेरा ऐसा कह रहा है, कह रहे हैं धृतराष्ट्र, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, और अर्जुन कह रहे हैं ये सब मेरे हैं, स्वजनम। अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि पांडव, अर्जुन ने क्या कहा, स्वजनम, ये सब मेरे स्वजन, मेरे अपने हैं। धृतराष्ट्र को वो ये सब उनके अपने नहीं लगे, उसमें के केवल 100 जो 100 पुत्र थे उनके वही अपने लगे, बाकी अपने लगे ही नहीं धृतराष्ट्र को। उतना ही दिखा, उतनी उनकी उतनी ही चिंता थी। परंतु तो अर्जुन को सब मेरे ही लग रहे, अर्जुन कह रहे सब ये मेरे ही है, मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे संगी है। तो यह भेद है धृतराष्ट्र और अर्जुन के समझ में, उनको सब अपने लग रहे हैं। ऐसे एक शब्द यहां पे है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दूसरा श्लोक। ये भगवद गीता ये अभ्यास का विषय है, इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, भगवद गीता संभाषण है, डायलॉग्स, डायलॉग अर्थात दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से संभाषण कर, चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात बार बार होगी, करे आपने परसों क्या बोला था, घर में होता है कि नहीं ऐसा, माता जी होता है ना, माता जी बोलते 6 साल 5 महीने 7 दिन और 17 घंटे के पहले आपने ये शब्द बोला था, बरोबर है कि नहीं। फिर प्रभु जी बोलते अच्छा मैं अपनी डायरेक्टरी खोलता हूं, ये होता है ना। आपको कोई अभी जो वर्तमान स्थिति में जो विषय है उसकी चर्चा करनी होती है तो आप क्या करते हैं, 4 साल पहले क्या बोले थे, 2 साल पहले क्या बोले थे, कल क्या बोले थे, क्योंकि दो व्यक्ति में संवाद है, ये भी दो व्यक्ति का संवाद है। तो यहां पे हम फिर से पीछे जाते हैं, सोचते कि पहले क्या हो गया, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में था ना, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम विवृढ़ दुर्योधनस्तदा। वो पांडवों की रचना देखकर राजा दुर्योधन ने कहा, है ना, ये देखा है ना, थोड़ा सा फ्लैशबैक। राजा दुर्योधन ने कहा, किसको कहा, किसको कहा, द्रोणाचार्य को कहा। पांडवों के युद्ध की रचना देखकर वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और ये कहा। फिर पहले अध्याय के 20वें श्लोक में क्या था, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, दृष्ट्वा, ये दृष्ट्वा शब्द हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम 1.20 व्यवस्थितान दृष्ट्वान धार्तराष्ट्रान, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, फिर से दृष्ट्वा आ गया। यहां पे धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्जुन ने देखा। 1.20 में क्या है, दुर्योधन ने पांडवों की रचना देखी। 1.20 में क्या है, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। और 1.28 अर्थात इसमें क्या है, फिर से दृष्ट्वा है, दृष्ट्वेमं स्वजनम। 1.28 फिर से अर्जुन ने देखा। अब जब अर्जुन ने देखा तो उसको क्या दिखा, उनको अर्जुन को स्वजनम। देखने में देखिए दृष्टि में फर्क है ना, कोई कैसा देखता है, कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है, हा? अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने स्वजनम दृष्ट्वा, 3 बार है। पहला दुर्योधन ने देखा, उसने पांडवों को देखा और देखकर द्रोणाचार्य के पास गए। अर्जुन ने देखा और देखकर कांप उठे, दोनों ने देखा एक दूसरे के सैन्यों को। दुर्योधन ने देखा तो द्रोणाचार्य के पास जाकर कूटनीतिक बातें करने लगा, और अर्जुन ने देखा तो शरीर कांपने लगा। कांपने क्यों लगा और वो बोलने क्यों लगा, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोलने क्यों लगा और अर्जुन ने ये देखकर अर्जुन कांपने लगे क्यों, क्योंकि दुर्योधन ये सब परिस्थिति को युद्ध की दृष्टि से देख रहा था। दुर्योधन किस दृष्टि से देख रहा था, युद्ध करने की दृष्टि से देख रहा था और अर्जुन जो है वे अपनेपन की दृष्टि से सबको देख रहे थे। दुर्योधन युद्ध मारने की दृष्टि से देख रहा था, सबको खत्म कर देना है, समाप्त करना है, मार डालना है सबको, विध्वंस। इसलिए कूटनीतिक बातें करने लगा और अर्जुन अपनेपन से देखने लगे, इसलिए अर्जुन कांप उठे। हाँ, अर्जुन कांप उठे। 16वें अध्याय के प्रथम 3-4 श्लोक में करुणा जो अभी अर्जुन के हृदय में है, इस विषय की बहुत अच्छी सी चर्चा की गई है और उसमें कहा गया है ये करुणा, ये जो गुण है ये करुणा दिव्य गुण है, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। करुणा दया भाव ये डिवाइन क्वालिटी है और कठोरता को आसुरी गुण बताया है, करुणा को दिव्य गुण बताया है और कठोरता को आसुरी गुण बताया है 16वें अध्याय में। परंतु स्थिति काल परत्वे, फोन बंद कीजिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्थिति काल परत्वे, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, कभी भक्त भी कठोर हो जाते हैं, भक्त कठोर हो जाते हैं। तो कभी कोई कहते हैं अरे ये तो भक्त है ऐसे, भक्त है वैसे, भक्त ऐसे कैसे, ऐसे हो जाता है, भक्त कभी कठोर हो जाते हैं। कठोरता तो आसुरी गुण है, कठोरता आसुरी गुण है। भक्त का जो स्वभाव होता है, भक्त का जो मूल स्वभाव होता है वो कोमल होता है, उनका हृदय कोमल होता है, भक्तों का, सात्विक व्यक्ति का, वो उनका मूल स्वभाव है। कौन सा? कोमलता, दया भाव, कंपैशन, ये उनका मूल स्वभाव है। कभी कभी एक हाथ बार वो कठोर हो जाते हैं, एक हाथ बार कठोर हो जाते, जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका स्वभाव कैसे है, एकदम दया, औदार्य, उदारता, प्रेम बांटने में उदार है, एकदम दया भाव है। परंतु जगाई बधाई जब सामने आए और उन्होंने देखा कि इन्होंने नित्यानंद प्रभु को पत्थर मार दिया और उनके माथे से रक्त बह रहा है, तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कठोर हो गए। एक हाथ बार, मूल स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव कंपैशन, दया भाव, परंतु एक हाथ बार कठोर हो जाते हैं, यह भक्त का लक्षण है। और आसुरी लक्षण क्या है, आसुरी लक्षण क्या है, आसुरी लक्षण यह है कि मूल स्वभाव कठोर रहता है, एक हाथ बार दया दिखाते हैं। एक हाथ बार, जैसे उदाहरण कंस है, बहुत कठोर व्यक्ति है, असुर है, कठोर है, भयंकर, परंतु देवकी के ऊपर एक बार दया दिखा दी, दिखा दी ना, मारा नहीं देवकी को, जैसे ही पता चला तलवार निकले, मार दूंगा, बोला शिरच्छेद कर दूंगा देवकी का। परंतु दूसरे क्षण उसको थोड़ा सा अनुभूति हुई या अनुभूति करवाई गई तो तुरंत थोड़ा सा दया भाव आ गया, नहीं ये तो मेरी बहन है, कैसे मारूंगा, नहीं मारूंगा, ठीक है रहने दो। दया भाव आ गया। एक हाथ बार, परंतु मूल स्वभाव क्या है, कठोर है। सो कभी कभी भक्तों में ऐसा कठोरता दिखती है परंतु फिर भी वे भक्त है, असुर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी कठोरता कभी कभार आती है, ज्यादातर समय दया रहती है, यह भक्तों का लक्षण है। यह अर्जुन का लक्षण है, दया भाव है, कंपैशन है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता है। सब जो दिख रहे वे अपने स्वयं के दिख रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो लक्षण है ये सात्विक व्यक्ति का लक्षण है, भक्त का लक्षण है, और अर्जुन उच्च कोटि के भक्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी समय तो समाप्त हुआ है, दूसरा श्लोक तो नहीं हो पाएगा। हमने सोचा था आज दो श्लोक करेंगे ही करेंगे, परंतु दूसरा श्लोक जरा मुश्किल है। 9 को 5 मिनट कम है, 5-7 मिनट में तो श्लोक नहीं हो पाएगा, इसलिए इस श्लोक को हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे इसकी। किसी का कोई प्रश्न है बोलिए। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? हाँ यही तो प्रश्न है सबका, सबने पूछा नहीं आपने पूछ लिया। इनर पर्सनालिटी को कैसे मजबूत बनाए, क्या करना होगा कि जिसके कारण ये जो हमारी इनर पर्सनालिटी है वो मजबूत हो जाएगी, क्या करना होगा, क्या प्रयास करने होंगे। इनर पर्सनालिटी अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक, इन सब का शरीर के साथ क्या संबंध है, शरीर को, इंद्रियों को ये कैसे नियंत्रित रख सकते हैं, ये कैसे समझेंगे, इसको कैसे स्ट्रांग करेंगे। सबसे आसान तरीका है, हम ये जो शरीर है, इस भौतिक शरीर, इस शरीर को स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं, जिम जाते हैं, नहीं एक्सरसाइज करते हैं, ग्राउंड में, गार्डन में भागते हैं, दौड़ते हैं, हैं, है ना। कितना देर करते हैं रोज? 1 घंटा समय देते हैं ना। हमारी समस्या क्या है पता है? इनर पर्सनालिटी के लिए हम समय ही नहीं देते, समय ही नहीं देते। सारा का सारा समय तो बाहर, बाह्य पर्सनालिटी, ये जो एक्सटर्नल है, फिजिकल है, मटेरियल है, इसी के लिए देते हैं। पहला पॉइंट, यदि हम इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हा? समय देना होगा, समय देना होगा। अब समय दिया, कितना समय दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उत्तर ही नहीं मिल रहा है। तो कैसे इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी? मुंह सूख जाएगा, शरीर कांप उठेगा। आजकल तो ये बस 20-25-30 साल में हो जाता है। अटेंटिव चैंटिंग, समय देना होगा, क्या करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा। इससे इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सर्वोत्तम उपाय है कि भगवान के, अब देखिए अर्जुन की जो पर्सनालिटी है ये स्ट्रांग हो गई कि नहीं हो गई, बाद में कैसे हुई, कैसे हुई प्रभु जी, कैसे हुई अर्जुन स्ट्रांग? अर्जुन अभी, अर्जुन ऐसे है, लेकिन अभी थोड़ी देर पश्चात देखिए 18वें अध्याय तक हम जाएंगे, तब तक तो अर्जुन कैसे बन जाएंगे देखिए। उपदेश उन्होंने श्रवण किया, अच्छा केवल उपदेश श्रवण किया, अरे हम तो सदियों से कर रहे हैं, हम सब बाल्यावस्था से भगवद गीता सुन रहे। प्रभु जी बालक थे ना, तब घर में इधर उधर पाठ होता था और हम सुनते आ रहे। हाँ क्या, हाँ नहीं, मोह तो छूटा, क्यों छूटा? अर्जुन ने क्या किया, केवल श्रवण किया क्या, जो हमने, हम करते आ रहे हैं। अर्जुन ने श्रवण करके आचरण किया, इसलिए अर्जुन ने 18वें अध्याय में क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, यहां पे रुके नहीं अर्जुन, करिष्ये वचनम तव, ये शब्द बहुत महत्व का है, इसको लिख लीजिए, हाँ, बार बार सुनती थी करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण नष्टो मोह, मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, सारा मोह दूर हो गया, सब दूर हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, जो मैं भूल गया था, क्या भूल गया था, मैं मेरे आत्मविश्वास को भूल गया था, मैं मेरे श्रद्धा विश्वास भक्ति को भूल गया था, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। अब क्या हुआ, स्मृति लब्ध्वा, मेरा वो विश्वास जागृत हुआ, मेरा वो आत्मविश्वास जागृत हुआ, वो भक्ति जागृत हुई, वो समर्पण जागृत हुआ, स्मृति लब्ध्वा। अच्छा, इसके बाद ठीक है, मोह नष्ट हुआ, भक्ति जागृत हो गई, अब क्या करेंगे, करिष्ये वचनम तव। अब मैं बाण उठाया हूं, हे कृष्ण बताओ कहां चलाओ, किसको मारू, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, करूंगा आचरण, आचरण। सो ये नष्ट हो गया मोह, पर क्या किया अर्जुन ने, नष्ट मोह नष्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उनकी आंतरिक जो व्यक्तित्व इनर पर्सनालिटी है वो मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ। वो स्ट्रांग कब हुआ, जो उन्होंने कृष्ण के उपदेश सुने और उसका आचरण किया। परंतु वो उपदेश सुनने के भी पहले उसने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, जिसके कारण कृष्ण को लगा कि इनको अभी मुझे उपदेश, योग्य उपदेश देने ही है, इनकी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करने के लिए इनको मुझे अभी उपदेश देना ही होगा, ऐसे कृष्ण को लगा। समर्पण 2.7 दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन ने जब ये कहा, क्या कहा, कार्पण्य दोष प्रवृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मैं थक गया हूं, हार गया हूं, बुद्धि चला चला के हैरान हो गया हूं, परंतु कुछ फल नहीं मिल रहा है, मैं और दात्राणी, मैं और वीक होते जा रहा हूं, अब मैं आपको शरण आ गया हूं, अब आप मुझे बताओ धर्म क्या है, सत्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं आपको समर्पित हो गया हूं, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, कृपा करके मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो हमको यदि हमारे इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले हमको यह कहना होगा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं गलित गात्र हो गया हूं, मैं हैरान हो गया हूं, आई एम द मोस्ट वीक पर्सन, एकदम दुर्बल हो गया हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सरेंडर कृष्ण, हे भगवान आप ही जो कुछ है वो सब कुछ आप है, आप मुझे उपदेश दो। जो अर्जुन ने किया वो हम करेंगे, अर्थात हमारे हृदय में हम समर्पण का भाव लाएंगे और समर्पण के भाव से जब हम श्रवण करेंगे भगवान के उपदेश, तो प्रत्येक उपदेश में हमको एक शक्ति प्राप्त होगी, प्रत्येक उपदेश में एक शक्ति प्राप्त होगी। और ये करने के लिए, ये श्रवण करने के लिए, ये भगवान के उपदेश प्राप्त करने के लिए, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है, अटेंटिव चैंटिंग करने से हमारी इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल सही है, अर्जुन की हुई, भगवान स्वयं आगे भगवत गीता में यही कहे, क्या कहे, क्या करना है आपको, मन मनाभव मत भक्तो, सबसे पहली बात बोले है वो मन जो है ना, जो आपके पास है वो मन, वो मुझे दे दो बस, कृष्ण कह रहे हैं आपका मन मुझे दे दो अर्थात मन मुझ में लगाओ, हो गया सब हो गया, हो गई पर्सनालिटी स्ट्रांग। परंतु ये करने के लिए क्या आवश्यक है, योग्यता क्या है इसके लिए, श्रद्धा, फेथ, विश्वास बहुत आवश्यक है, विश्वास बहुत आवश्यक है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्या, फेथ इज द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की जननी कौन है, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो भक्ति कैसे आएगी? श्रद्धा है तो भक्ति आएगी, श्रद्धा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है, श्रद्धा ये योग्यता है नाम जप करने की। नाम जप करो श्रद्धा से करो, विश्वास से करो। अब ये श्रद्धा के लिए क्या योग्यता है? साधु संग, श्रद्धा यदि हमको चाहिए तो साधु संग करना होगा। साधु संग, साधुओं का संग करो बस। संग करने का अर्थ क्या है? जब भी कोई साधु दिखते हैं उनसे कुछ सुनो, उनको कुछ प्रश्न पूछो, उसको साधु संग कहते हैं। साधु संग अर्थात ऐसे नहीं कि बहुत सारे साधु थे मंदिर में गए, बहुत सारे साधु दिखे, प्रसाद ले रहे थे, उनके बाजू में जाके हमने भी प्रसाद ले लिया, हो गया साधु संग। कई तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा में गए, बहुत सारे साधु लोग थे, वो तीर्थ में स्नान करे थे, हम भी बाजू में जाके डुबकी लगा के आ गए, हो गया साधु संग। ऐसा साधु संग इसको नहीं कहते साधु संग। साधु संग किसको कहते हैं? उनसे कुछ पूछो, उनका कुछ समझो, वो क्या कह रहे हैं वो जान लो, उसको साधु संग कहते हैं। और साधु संग हमको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर क्या योग्यता है उसकी? सरलता एक मुद्दा है, समर्पण से तो आगे हम यहां तक। निर्मल मन, साधु संघ हमको चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो, मुझे कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड, तो मुझे वो जो चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। साधु अपने आप मेरे घर पे आके मुझे प्रवचन देंगे क्या? अरे चलो साधु को पता हो गया चलोगे, नहीं, प्रयास करना होगा। कैसे प्रयास करना होगा? युक्ताहार विहारस्य, कैसे प्रयास करना होगा? प्रभु जी जो प्रश्न पूछे आपका उत्तर यहां से शुरू होता है। प्रयास करना होगा, और प्रयास कैसे होना चाहिए? युक्त, युक्त, युक्त आहार विहार। हमारा जो आहार है, हम जो खाते हैं ना, वहां से शुरुआत होती है। यदि हमको हमारे इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना है तो कहां से शुरुआत होती है? हमारे भोजन से। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कभी भी खाते हैं क्या जानवर के जैसा? तो इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं होगी। कैसे भी खाते हैं क्या? रास्ते पे खड़ा रह गया आ आ आ करके। कभी कभी हम देखते हैं लोग आ आ, वो इतना बड़ा बड़ा कुछ होता है, ऐसे ऐसे खाते हैं, जस्ट लाइक एन एनिमल। कैसे इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग? युक्त आहार नहीं है। आहार युक्त होना चाहिए, उसका नियम है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने समय पे खाना है, है ना? युक्त आहार विहार। हम जो भी प्रकृति के संपर्क में है वो प्रकृति कैसी है, हमारा विहार, हम जहां जिसके भी संपर्क में आते हैं वो सब कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। ये तो बाहरी बातें हो गई है, इस पे आपको विचार करना होगा। मेरी इनर पर्सनालिटी को यदि मुझे स्ट्रांग करना है और मैं रोज सुबह और शाम सिनेमा देख रहा हूं तो होगी स्ट्रांग? सिनेमा हॉल में जा रहा हूं सुबह दोपहर शाम एवरी सैटरडे संडे, इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं होगी। तो विहार में कहां जा रहा हूं? नहीं, नॉट पॉसिबल। कर्म युक्त, कर्म, कर्म कैसे होने चाहिए? मेरे कर्मों से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। मैं रोज प्लानिंग करता हूं कि लोगों को कैसे प्रताड़ित करूं तो मेरी पर्सनालिटी कैसे स्ट्रांग होगी। आज मैं पॉलिटिक्स करता हूं मेरे बॉस के लिए, फिर पॉलिटिक्स करता हूं मेरे कलीग के लिए, फिर पॉलिटिक्स करता हूं पारिवारिक सदस्यों के लिए, फिर पॉलिटिक्स करता हूं समाज के लिए, पूरा जीवन तो पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो कैसे इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी? सो नहीं, कर्म कैसे चाहिए उसकी चर्चा तीसरे अध्याय में होगी। बोध अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे पास ज्ञान और विवेक चाहिए। ज्ञान हमको प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करके उसके एप्लीकेशंस, उसको अप्लाई करना है। उसको विवेक कहते हैं, अप्लाइड नॉलेज इज विवेक। तो ये जब हम करते हैं तभी जाके इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी। शुरुआत हमारी युक्त आहार से, आहार विहार कर्म ज्ञान। सो आहार में हमका खान पान ठीक करना होगा, विहार अर्थात हमारा कंप्लीट बिहेवियर, हमारा डिसेंट डिसिप्लिन पर्सनालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई शिस्त होनी चाहिए, कुछ तो नियम होने चाहिए, कुछ कुछ भी पर कुछ होना चाहिए। कोई नियम ही नहीं है तो कैसे होगा। हाँ, कुछ नियम बनानी चाहिए, शिस्त लगानी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आहार फिर शिस्त, हमारे पूरे आचरण में शिस्त होनी चाहिए, आहार विहार। और फिर ऐसे यदि हम जीवन यापन करते तो हमारे कर्म नेचुरली अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे कर्म यदि हम करेंगे तो उसकी रिएक्शन नहीं आएगी, उसकी रिएक्शन नहीं आएगी तो हमारा ज्ञान लेने का जो स्तर है ऊंचा होगा, हम थोड़ा ज्ञान लेते जाएंगे, और इस प्रकार से ज्ञान लेते जाएंगे, हमारे कर्म अच्छे होते जाएंगे, तो हमको कभी ना कभी साधु संग मिलेगा। साधु संग मिलेगा तो साधु संग मिलने से श्रद्धा प्राप्त होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, श्रद्धा विश्वास आएगा, भक्ति बढ़ेगी, मन भगवान में लगेगा, हम और हाइयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चलते जाएंगे, और हाइयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चलते जाएंगे, और फिर इस प्रकार से हमारी जो इनर पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग होगी। ये मैंने आपको केवल एक सुपर 10-5 मिनट में बता दिया है, परंतु ये विस्तृत विषय है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। इसीलिए हम रेगुलर भगवद गीता चारों क्लास चारों शनिवार को रखे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमें समझ के अपने इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करें। ये सब प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में आज हमने एंट्री की है। हम एवरी सैटरडे आ रहे, प्रति शनिवार आ रहे, अर्थात हमको अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना है। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पहले हम ये जान रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी वीक कहते हैं, वीकनेसेस हम जान रहे हैं, वीकनेसेस को जान लेंगे, फिर उसके उपाय शुरू हो गए और फिर उसके एप्लीकेशन शुरू हो गए। इसलिए अर्जुन का वो जो श्लोक है नष्टो महास्मृति लब्ध्वा 18वें अध्याय में, आई थिंक 18वें अध्याय का 33वां श्लोक है शायद आसपास का, क्योंकि वो लास्ट स्टेज है। सो हम ये जो पहले जो स्टेजेस है इसको हम अपने स्वयं को समझने का प्रयास करते 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 आगे बढ़ेंगे। परंतु इन शॉर्ट संक्षिप्त में यदि आप समझते हैं तो दो तीन बातें समझना जरूरी है। हमारा आहार ठीक होना चाहिए, हमारा आचरण ठीक होना चाहिए जिसमें शिस्त हो, हमारे कर्म जो है कुकर्म नहीं होने चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति की हमारी लालसा होनी चाहिए, दिव्य ज्ञान। ये चार बातों से हमारी इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के नाम में रुचि आती है, साधुओं का संग प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम अपने इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग करने का प्रति शनिवार प्रयास करते हैं भगवान के नाम का जप करके एक माला, तो हम सभी एक साथ एक माला जप करेंगे और उसके पश्चात प्रसाद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।